गिरिवर धारी जय गोपी जन बना जया गिरिवर धारी जय हो जय हो शोदानंदना ब्रज जन जय ब्रज जन जय यमुना तीरा बन चारी जय कुंज जयामुना तीरा बन चारी जय कुंज जय हो राधा माधव जय कुंज राधा राधा माधव जय कुंज जय हो नितय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय प्रभु पदा प्रभु पदा प्रभु पदा जय प्रभु पदा
प्रणाम करें। जय ओम विष्णु परमहंस परिव्राज गजानन अष्टोत्तर श्री श्री महेश डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य शिवराम दी होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौणताय की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री प्रहलाद नृसिंह देव की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंदी ऑल ग्लोरियस सेंट डिवोटीज ऑल ग्लोरियस सेंट डिवोटीज ऑल ग्लोरियस सेंट डिवोटीज ऑल ग्लोरियस श्री गुरु एंड गौरांगा। पंखा बंद कर दीजिए, जितने पंखे चल रहे हैं सब बंद कर दीजिए। सब लोग मेरे पीछे बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता था अध्याय 12, अध्याय का नाम है भक्ति योग, श्लोक संख्या 18-19। पुस्तक और भी रखी है, जो हिंदी पढ़ते हैं किताब ले सकते हैं, और किताब रखी ना आप लोग जो हिंदी पढ़ते हैं किताब ले सकते हैं, हिंदी पढ़ते हैं ना किताब ले लीजिए, किताब ले लीजिए, एक किताब और भी यहाँ भी ले सकते हैं। पेज नंबर खोलिए 413। खोला सबने? हरि बोल। 413 पेज नंबर मिल गया सबको? किसको नहीं मिला? पेज नंबर 413 किसको नहीं मिला? मिला सबको? मिल गया? मेरे पीछे बोलिए। समासत्र च मित्रे च तथा मानापहमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समासंग विवर्जितः तुल्य निन्दास्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेता स्थिर मते भक्तिमान मे प्रियो नरा। समासत्र च मित्रे च तथा मानाप्यमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समासंग विवर्जिता तुल्य निन्दास्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेता स्थिर मते भक्तिमान मे प्रियो नरः। तो आप लोग एक एक करके बोल सकते हैं, बोलिए। और कोई बोली? दूसरा और कोई? दूसरे श्लोक और कोई बोलो? शब्दार्थ बोलिए। समान शत्रु में च तथा मित्रे मित्र में च भी तथा उसी प्रकार मान सम्मान अपमान योहो तथा अपमान में शीत जाड़ा उष्ण गर्मी सुख सुख दुखेषु तथा दुख में समा संभाव संग विवर्जिता समत संगति से मुक्त है। तुल्य समान निंदा अपियस स्तुति तथा यश में मौनी मौन संतुष्ट संतुष्ट येन केनचित जिस किसी तरह अनकेता बिना घर बार के स्थिर दृढ़ मति संकल्प भक्तिमान भक्ति में रत मेरा प्रिया प्रिय नरा मनुष्य। अनुवाद मेरे पीछे बोले जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है जो मान तथा अपमान शीत तथा गर्मी सुख तथा दुख यश तथा अपयश में संभाव रखता है जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है जो सदैव मौनी नहीं जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। यहाँ धागा लगा करके सब लोग प्रार्थना निकालिए भूमिका में पहला पेज निकालिए। सब लोग मेरे साथ बोलिए ओम अज्ञान तिमिरांधस ज्ञानांजन शलाकयं चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदांदिकं वंदेहं श्रीगुरों श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरों वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सागण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सागण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछा कल्पितरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्ते नामिने नमस्ते। सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाशात देश तारिणे। श्लोक फिर से निकालिए, इस श्लोक को समझेंगे भगवान क्या कह रहे हैं। बात है नहीं, बात है नहीं, ये कौन बातें कर रहा है यहाँ पर, बातें कौन कर रहा है, है? आप लोगों को सोचना चाहिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है, थोड़ा तो होश होना चाहिए आप लोगों को। इतने बेहोश हैं कि देख नहीं रहे यहाँ पर क्या हो रहा है, मंदिर में आने का क्या तरीका है, आपस में बातें करना, सबको इशारा करिए, गार्ड कहाँ है यहाँ पर, कोई गार्ड नहीं है, सबको इशारा करिए चुप रहने का। तो इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं समा शत्रो च मित्रे चा, कैसा भक्त मुझे प्रिय है। भगवान कह रहे हैं समा शत्रो च मित्रे चा, पहली बात शत्रु मित्र में समान, फिर दूसरी बात तथा मान अपमान यो, मान अपमान में समान, तीसरी बात शीतोष्ण सुख दुख सु, सर्दी गर्मी के जैसे सुख दुख में भी समान है, फिर चौथा समा संग विवर्जिता, संग विवर्जिता कुसंगति से मुक्त, कितनी हो गई, एक दो तीन चार, चार बातें हो गई। फिर पांचवी बात तुल्य निंदा स्तुतिर, पांचवी बात क्या है, निंदा स्तुति में समान। फिर छठवीं बात मौनी, मौन रहने वाला, अनावश्यक बातें नहीं करता, फालतू की बातें नहीं करता। छह हो गया सातवां संतुष्टो ये न के नीचे, जिस किसी प्रकार से भी संतुष्ट रहता है, कितना हो गया, आठ हो गया, एक दो तीन चार पाँच छ सात, सात हो गया। और आठवां अनिकेता बिना घर बार के आठ। फिर नवा स्थिर मतिर, मति जिसकी स्थिर हो, भक्तिमान में प्रियो नरा, ऐसा भक्तिमान मनुष्य मुझे प्रिय है। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। भक्त सदैव कुसंगति से दूर रहता है। तो सबसे पहले प्रभुपाद तात्पर्य में कुसंगति की बात करते हैं, कुसंगति से दूर रहता है ना। तो श्लोक में देखिए, इस श्लोक में कौन सा यहाँ पर शब्द है जिसमें प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कुसंगति से दूर रहता है, आप संग विवर्जिता। हाँ, तो प्रभुपाद यहाँ से शुरू करते हैं व्याख्या, संग विवर्जिता, संग से जो मुक्त रहता है, जो संग से मुक्त रहता है, और संग का मतलब कुसंगति, संगति का मतलब कुसंगति से जो दूर रहता है ना। यहाँ संग का मतलब साधु संग नहीं है, यहाँ संग का मतलब कुसंगति है ना। तो जो कुसंगति से दूर रहता है ना, आगे प्रभु लिखते हैं मानव समाज का स्वभाव है कि कभी किसी की प्रशंसा की जाती है तो कभी उसकी निंदा की जाती है ना। ये जो बात प्रभु लिखते हैं प्रशंसा और निंदा की, इसमें कौन सा शब्द है इस श्लोक में, कौन बताएगा इस श्लोक में कौन सा शब्द है, है? क्या जहां लिखा है कि प्रशंसा और निंदा, प्रशंसा और निंदा तुल्य निंदा स्तुति, निंदा स्तुति में समान, निंदा स्तुति में समान, मान और अपमान में अंतर है, मान और अपमान में और निंदा स्तुति में अंतर है। मान और अपमान है, हम किसी का सम्मान करते हैं तो शरीर से भी सम्मान होता है, किसी का शरीर से सम्मान करते हैं, जैसे आते हैं तो उनको खड़े होते हैं, उनको आसन देते हैं, है ना। तो ये सम्मान शरीर से भी किया जा सकता है किसी का, लेकिन निंदा स्तुति वाणी के द्वारा होती है। प्रशंसा करते हैं या किसी की निंदा करते हैं वो वाणी के द्वारा करते हैं, लेकिन सम्मान और अपमान हम उनका शरीर से भी कर सकते हैं, मन से भी कर सकते हैं, वाणी से भी कर सकते हैं। तो मान अपमान, मान अपमान में और निंदा स्तुति में ये अंतर है। निंदा स्तुति हो सकता है कि हम उसका अपमान नहीं कर रहे हैं लेकिन निंदा करते हैं। कैसे? अगर हम पीठ पीछे निंदा करते हैं तो उसका अपमान तो हमने नहीं किया, अपमान तो सामने होता है। अपमान, मान और अपमान तो सामने होता है। कोई व्यक्ति आता है हमारे सामने तो हम उसका मान करते हैं, अपमान करते हैं, तो ये सामने होता है ना। उसमें भी निंदा कर सकते हैं उसकी या स्तुति कर सकते हैं, लेकिन निंदा स्तुति वैसे भी की जा सकती है। उसका मान अपमान हमने कुछ नहीं किया, कि सामने नहीं है वो, भाई उसकी हम निंदा करते हैं या उसकी स्तुति करते हैं तो वाणी के द्वारा होती है। तो इसलिए भगवान ने अलग लिखा है, मान अपमान में समान ये अलग बात है और निंदा स्तुति में समान अलग बात, इसलिए अलग अलग लिखा है। तो प्रभुपाद यहाँ चर्चा कर रहे हैं किस चीज़ की? निंदा स्तुति की। कैसे? मानव समाज का स्वभाव है कि कभी किसी की प्रशंसा की जाती है तो कभी उसकी निंदा की जाती है। मानव समाज का स्वभाव है क्या कि कुछ कहना है, कुछ तो कहना है ना, तो बस कहना है तो कुछ ना कुछ कहें, जो मन में आया तो कभी उल्टा बोलने लगे कभी सीधा बोलने लगे, और उसी व्यक्ति के बारे में उसी व्यक्ति के बारे में कभी उल्टा बोलने लगते हैं कभी सीधा बोलने लगते हैं। मानव समाज में होता है, अगर आप कोई अच्छा काम करते हैं तो वो अच्छा ही अच्छा फिर बोलेंगे, फिर वो उसके दोस्त भूल जाते हैं, फिर उसके गुण ही गुण बोलते हैं, और अगर कुछ उल्टा काम कर दिया आपने तो फिर जो है आपके गुण भूल जाएंगे, फिर दोस्त ही दोस्त बोलेंगे। तो मानव समाज का स्वभाव है, प्रशंसा करेंगे तो प्रशंसा ही करते जाएंगे, फिर निंदा नहीं करते हैं, और निंदा करेंगे तो निंदा ही करते जाएंगे, फिर प्रशंसा नहीं करेंगे, है ना। ये मानव समाज का स्वभाव है ना। तो प्रभुपाद क्या लिखते हैं? मानव समाज का स्वभाव है कि कभी किसी की प्रशंसा की जाती है तो कभी उसकी निंदा की जाती है, लेकिन भक्त कृत्रिम यश तथा अपयश दुख या सुख से ऊपर उठा हुआ होता है। ये कृत्रिम है, भक्त की नजरों में ये सब यश और अपयश दुख सुख कृत्रिम है। कृत्रिम का मतलब क्या है? बनावटी है, ये सब बनावटी है। यश अपयश ये सब बनावटी है, क्यों ज्यादा समय तक रहता नहीं है। मानव समाज में किसी की अगर मान लो प्रशंसा होती है तो ज्यादा समय तक नहीं रहती है, भूल जाते हैं। अब समाचार पत्र में कितनी बातें निकलती हैं, कई बार हमारे मंदिर को लेकर के भी या हमारे हरे कृष्ण आंदोलन को लेकर के भी कुछ उल्टी बातें छाप दी जाती हैं, मीडिया में आती हैं, उल्टी बातें आती हैं, लेकिन कुछ समय के बाद सब समाप्त हो जाता है ना। फिर जो है कुछ प्रशंसा की बातें भी आती हैं हमारे हरे कृष्ण आंदोलन की, है ना। तो ये जो है कृत्रिम इसलिए है कि मानव समाज का स्वभाव है, मानव समाज का स्वभाव है। लेकिन हाँ, भगवान का जो यश है, भगवान की जो प्रशंसा है वो कृत्रिम नहीं है। इसलिए हरे कृष्ण आंदोलन की जितनी प्रशंसा आप करते हैं वो बनावटी नहीं है, लेकिन निंदा जो करते हैं वो तो बनावटी है, कुछ समय तक रहेगी फिर नहीं रहेगी, लेकिन जो यश है जितना भी है वो बना रहता है क्योंकि सत्य सत्य है। लेकिन वैसे सामान्य व्यक्ति के बारे में कुछ बातें छपती हैं, किसी फिल्म स्टार के बारे में कभी बातें छपती हैं या मीडिया में आती हैं कि ये गलत है वो गलत है, ज़्यादा समय तक रहता नहीं। या किसी फिल्म स्टार के बारे में बड़ी अच्छी बातें आती हैं कि भाई बहुत अच्छा है, ज़्यादा समय तक नहीं रहती, क्योंकि सब बनावटी है, सब कुछ बनावटी है। क्योंकि शरीर जिस के आधार पर किसी की प्रशंसा होती है या किसी की निंदा होती है। ये शरीर ही अनित्य है, बदल रहा है, तो फिर शरीर पर आधारित उसकी निंदा या प्रशंसा कैसे स्थायी रहेगी? सब बनावटी है, जब शरीर ही बनावटी है। लेकिन भगवान का जो यश, भगवान की लीलाएं हैं, भगवान के कार्य हैं, भगवान के चरित्र हैं, तो ये जो है शाश्वत है, ये शाश्वत है, ये समाप्त नहीं होते। भगवान कृष्ण का जो गुणगान है ये 5,000 साल हो गए, लेकिन और बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। श्री चैतन्य देव का गुणगान है, 500 साल हो गए हैं, है ना, और बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। क्यों? सत्य है, जो सत्य है वो टिकता है। लेकिन बाकी जो है निंदा स्तुति, किसी की जो है किसी कारण से जो है लोग निंदा करने लगते हैं, स्तुति करने लगते हैं, तो ये सब क्या है? बनावटी है। तो प्रभुपद क्या लिखते हैं? लेकिन भक्त कृत्रिम यश तथा अपयश दुख या सुख से ऊपर उठा हुआ होता है, उसी प्रकार से दुख और सुख भी है, है ना, तुल्य निंदा स्तुति, है ना। तो कृत्रिम सुख और दुख से भी ऊपर उठा हुआ होता है। आगे वो अत्यंत धैर्यवान होता है, धैर्यवान होता है, तो ये धैर्यवान, ये सब इसी में ही समझ लो, समझना चाहिए। जो तुल्य निंदा स्तुति मौनी है, इसी में ही धैर्यवान भी समझना चाहिए कि वो धैर्यवान है। अगर वो जो है सुख दुख में समान है, निंदा स्तुति में समान है, तो ये धैर्य का ही गुण है। तो इसमें धैर्य ही माना जाएगा कि धैर्य है उसके अंदर, वो धैर्यवान होता है। आगे वो कृष्ण कथा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं बोलता, अतः उसे मौनी कहा जाता है। शब्द है ना इस श्लोक में, क्या? मौनी। तो मौनी का मतलब कि वो मौन रहता है। तो गीता के इस शब्द को लेकर के कुछ लोग क्या करते हैं? मौनी भाव बन जाते हैं कि हम भाई जो है गीता में तो कहा गया है कि भगवान का भक्त मौनी होता है, भगवान का भक्त मौनी रहता है, हैं, तो मौनी बाबा बन जाते हैं, हैं, या मुंह में कपड़ा बांध लेते हैं, या वैसे ही कागज और पेन रख लेते हैं, हैं, किसी से कुछ बोलना है तो वो लिख करके बताएंगे। सुनते तो हैं लेकिन बोलते नहीं, बोलना है तो लिख करके बोलेंगे, तो मौनी बाबा बन जाते हैं। लेकिन प्रभुपाद बताते हैं कि मौनी का मतलब यहाँ क्या है? कृष्ण के कथा के अलावा और कुछ नहीं बोलना, फालतू की बातें नहीं बोलना। फालतू की बातों में कितना टाइम खराब होता है, एक बात छिड़ जाती है, किसी फिल्म की बात छिड़ जाती है तो उसी में ही घंटों चर्चा कर देते हैं, यहाँ वो हीरो उसने ये किया, उस हीरोइन ने ये किया, उस विलेन ने ये किया, ये वो है, या किसी फिल्म स्टार की चर्चा चलती है तो उसी के बारे में बोलते रहते हैं, वो कैसे खाता है, वो कैसे चलता है, यही सब चलते रहते हैं। किसी हीरोइन की बात है, और राजनीति में भी जो है कुछ चर्चा छिड़ जाती है तो उसी में ही चर्चा चलती रहती है, किसी नेता के बारे में चर्चा चलती रहती है। लेकिन मौनी का मतलब क्या है? इन सब बातों में रुचि नहीं लेता वो। मौनी का मतलब ये है कि इन बातों का उत्तर भी नहीं देता है, कोई पूछता है कि ये क्या है, वो क्या है, दुनिया भर की बातें पूछता है, तो वो मौनी है। लेकिन ऐसे मौनी भी ठीक नहीं है कि वो कुछ उत्तर ना दे, बल्कि बात को घुमा देता है और कृष्ण की तरफ ले आता है, जैसे प्रभुपाद थे। तो प्रभुपाद से कोई व्यक्ति किसी भी तरह की बातें करे, प्रभुपाद उसकी बात को घुमा करके कृष्ण में ले आते थे। तो मौनी का मतलब ये नहीं कि कुछ बोलना नहीं, कृष्ण कथा के अलावा कुछ नहीं बोलना। तो कोई भी जो है विषय की बातें कोई व्यक्ति करता था तो प्रभुपाद जो है उसको मोड़ करके कृष्ण कथा में लाते थे। तो यहां पर मौनी का मतलब ये, तो प्रभुपाद लिखते हैं आगे, हाँ देखो प्रभुपाद कितना अच्छा लिखते हैं। मौनी का अर्थ ये नहीं कि वो बोले नहीं, कितना अच्छा है, क्योंकि गीता के शब्द से लोग भ्रमित होंगे, प्रभुपाद जानते हैं लोग भ्रमित होंगे, इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं मौनी का अर्थ ये नहीं कि वो बोले नहीं, अपितु ये कि वो अनर्गल आलाप ना करे, फालतू की बातें ना करे। है ना। आगे मनुष्य को आवश्यकता पर बोलना चाहिए और भक्ति के लिए सर्वाधिक अनिवार्य वाणी तो भगवान के लिए बोलना है, बहुत आवश्यक है। कलयुग में तो वैसे भी कीर्तन की विधि बताई गई है, कलयुग में तो क्या कहेंगे, एकमात्र कीर्तन की ही विधि है, कीर्तना देव कृष्णस्य। और कीर्तन कैसे किया जाता है, वाणी के द्वारा ही तो किया जाता है। तो कीर्तन ये भी है, जैसे मैं बोल रहा हूँ ये भी कीर्तन है। आप किसी को प्रचार कर रहे हैं, किसी को कृष्ण के बारे में समझा रहे हैं, और किसी को आप प्रभुपाद की पुस्तक दे रहे हैं, तो आप बोल रहे हैं, तो ये भी सब जो है कीर्तन है, है? तो मौन का मतलब बिल्कुल गलत है ये कि कोई व्यक्ति जो है मौन धारण कर लेता है, है? तो कोई दूसरा व्यक्ति उनके साथ होता है, स्वामी जी बात नहीं करते, स्वामी जी बात नहीं करते। वो कहते हैं 12 साल से मौन धारण किया हुआ है स्वामी जी ने, कितने मारे महात्मा हैं, 12 साल से मौन धारण किया हुआ है, 20 साल से मौन धारण किया हुआ है, कितने बड़े महात्मा है। लेकिन प्रभुपाद क्या कहते हैं कि बहुत से जो है महात्मा बनने के लिए मौन धारण कर लेते हैं कि कुछ बोलना नहीं पड़ेगा, तो पता भी नहीं चलेगा कि मूर्ख आदमी है, कुछ जानता ही नहीं है, वो कुछ जानता ही नहीं है कृष्ण के बारे में, ना प्रचार करना चाहता है कृष्ण का तो दिखाने के लिए मैं कितना बड़ा महात्मा हूँ वो मौन धारण कर लेता है। लोग सोचते हैं कितने बड़े महात्मा हैं, कुछ बोलते ही नहीं, लेकिन अगर वो बोलेंगे तो पता चल जाएगा कि कितने बेवकूफ हैं, है ना, तो इसलिए बोलते नहीं हैं, वो महात्मा बने फिरते हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि भक्ति के लिए सर्वाधिक अनिवार्य वाणी तो भगवान के लिए बोलना है। आगे भक्त समस्त परिस्थितियों में सुखी रहता है, ये देखिए इसमें कौन सा शब्द है ऐसा, प्रभुपाद लिखते हैं भक्त समस्त परिस्थितियों में सुखी रहता है, इस श्लोक में कौन सा शब्द है देखिए, संतुष्टो येन केनचित, देख रहे हैं, संतुष्टो येन केनचित, येन केनचित मतलब जिस किसी प्रकार से संतुष्ट, जिस किसी प्रकार से संतुष्ट है, जैसे कहते हैं जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रखिए, है ना, जे हुई जिस किसी प्रकार से संतुष्ट है, संतुष्टो येन केनचित। आगे प्रभुपाद ने कभी उसे स्वादिष्ट भोजन मिलता है तो कभी नहीं, किंतु वो संतुष्ट रहता है, स्वादिष्ट मिला कभी नहीं मिला, है ना, संतुष्ट रहता है। भोजन के पहले क्या बोलता है, कृष्णा बड़ा द्वया मोय, है बहुत पहले से ही उसका सिद्धांत है, अभी उसने चखा नहीं है प्रसाद नहीं, अभी उसने चखा तो प्रसाद खाने के पहले ही वो जो है प्रणाम करता है, बहुत संतुष्ट होता है, क्या कह के कि कृष्ण बड़े दयालु हैं, करीब आ रहे जेहवा जोई, जेहवा में जेहवा के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए स्व प्रसाद अन्न दिलो भाई, अपना प्रसाद रूपी अन्न दिया है कृष्ण ने, ये प्रसाद जो दिया है वो जेहवा को भस्म करने के लिए दिया है, स्व प्रसाद अन्न दिलो भाई, सेन्ना अमृत पाओ तो उस अमृत को अब पाओ, खाओ नहीं पाओ, सेन्ना अमृत पाओ, प्रसाद हम पाते हैं खाते हैं, फिर भी व्यवहार में बोलते हैं प्रसाद खा रहे हैं, लेकिन वैसे तो प्रसाद पाते हैं, सेन्ना अमृत पाओ, राधा कृष्ण गुण गाओ, और राधा कृष्ण का गुण गाओ, प्रेमेडा को चैतन्यदाई, है ना, तो ये संतुष्ट। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि कभी उसे स्वादिष्ट भोजन मिलता है तो कभी नहीं, किंतु वह संतुष्ट रहता है। आगे वो आवास की सुविधा की चिंता नहीं करता, आवास मतलब घर, घर मकान आवास, वो आवास की सुविधा की चिंता नहीं करता, रहने की सुविधा की चिंता नहीं करता। तो इसमें क्या शब्द है श्लोक में, श्लोक में देखिए कौन सा शब्द है, अनिकेता, अनिकेता, निकेत का मतलब है घर, अनिकेत माने बेघर बार, बिना घर का, बिना घर का अनिकेता है। तो आगे प्रभु कहते हैं वो कभी पेड़ के नीचे रह सकता है तो कभी अत्यंत उच्च प्रासाद में, प्रासाद मतलब महल, हाँ ऊंचे महल में, गगनचुंबी महल में, कभी पेड़ के नीचे रहता है, कभी 100 फ्लोर की बिल्डिंग में भी रहे हैं, अत्यंत ऊंचे प्रासाद में, किंतु वो इनमें से किसी के प्रति आसक्त नहीं रहता, इसलिए अनिकेता है बिना घरवार का है? तो वो जो है वो उसे अपना घर नहीं समझता, उसको भी अनिकेता बोलते हैं। अनिकेता उसका मतलब अगर वो अच्छे घर में भी रहता हो तो भी उसको अनिकेत कहा जाएगा, अगर वो उस घर को अपना नहीं समझता है, भगवान का समझता है और भगवान की सेवा में लगा हुआ है तो अनिकेत, उसको भी अनिकेत कहा जाता है। अनिकेता आगे प्रभु लिखते हैं, किंतु वो इनमें से किसी के प्रति आसक्त नहीं रहता, किसी के प्रति मतलब पेड़ के नीचे रहता है तो फिर ये नहीं कि नहीं मैं पेड़ के नीचे ही रहूंगा, तो ये भी जो है अनिकेत नहीं है। अगर उसकी आसक्ति होगी पेड़ के नीचे की, इसी पेड़ में के नीचे में रहता हूँ रहूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तो वो भी एक आसक्ति है, तो उसमें भी आसक्त नहीं है। और ऊंचे भवन में भी जो है रहता है तो उसमें भी उसकी आसक्ति नहीं कि मैं यहीं पर रहूंगा, मुझे यही मकान चाहिए, तो उसकी आसक्ति नहीं है, तो उसको कहते हैं अनिकेता। अनिकेता इसके बाद प्रभु लिखते हैं वो स्थिर कहलाता है क्योंकि वो अपने संकल्प तथा ज्ञान में दृढ़ होता है। कौन सा शब्द है श्लोक में? स्थिर मति। अनिकेता स्थिर मति, तो घर उसका जो है कोई होता नहीं है, अपना घर नहीं होता है, लेकिन मति स्थिर होती है। घर अलग अलग होते हैं, अगर वो यात्रा करता है तो कभी किसी घर में ठहर जाता है, कभी किसी घर में ठहर जाता है, तो घर तो उसका जो है स्थिर नहीं है, लेकिन मति स्थिर है, स्थिर मति है। अनिकेता स्थिर मतिर है ना, अपने संकल्प ज्ञान में दृढ़ होता है। आगे भले ही भक्ति के लक्षणों की कुछ पुनरावृत्ति हुई हो, लेकिन ये इस बात पर बल देने के लिए है कि भक्त को ये सारे गुण अर्जित करने चाहिए। पुनरावृत्ति हुई हो, जैसे कि शत्रु मित्र में समान, मान अपमान में समान, तो ऐसा भी कहा जा सकता है कि एक ही जैसा है, लेकिन अगर गहराई से देखा जाए तो अंतर है। शत्रु मित्र में समान, मान अपमान में समान, निंदा स्तुति में समान, अंतर है। लेकिन अगर बड़े मोटे तौर से देखा जाए तो मतलब वही वही बातें हैं, ऐसा लगता है कि भगवान ने वही वही बातें बोली हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं अगर आप पुनरावृत्ति ही मानते हो कि भाई उसी बात को दोहरा रहे हैं भगवान बार बार, तो प्रभुपाद क्या लिखते हैं, लेकिन ये इस बात पर बल देने के लिए है कि भक्त को ये सारे गुण अर्जित करने चाहिए। भगवान अगर मान लो दोहरा रहे हो तो ये भी दोष नहीं माना जाएगा, क्यों? क्योंकि किसी बहुत महत्वपूर्ण बात को अगर दोहराया जाए तो वो दोष नहीं माना जाता है। जैसे कोई आश्चर्य, कोई बहुत बड़ा आश्चर्य होता है तो हम क्या कहते हैं, आश्चर्य है, हो हो कितना आश्चर्य है, अरे बहुत बड़ा आश्चर्य है, तो बार बार हम बोलते हैं आश्चर्य है, आश्चर्य है, आश्चर्य है, क्यों? क्योंकि इतना आश्चर्य है कि हम एक बार बोलने पर संतुष्ट नहीं होते तो बार बार बोलते हैं। उसी प्रकार से भगवान भी अगर कोई गुण को बार बार दोहरा रहे हैं तो ये भी दोष नहीं है, बल्कि उसका महत्व दिखाने के लिए। आगे सद्गुणों के बिना कोई शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। क्या सद्गुणों के बिना कोई शुद्ध भक्त नहीं बन सकता? कोई कहे भाई ये शुद्ध भक्त हैं, कोई कहे शुद्ध भक्त हैं, लेकिन इनमें से कोई गुण नहीं है जो भगवान ने बताया, तो फिर कैसे कहेंगे शुद्ध भक्त हैं? कई आधार पर कहेंगे कि वो सन्यासी है, बहुत बड़ा सीनियर है, या प्रभुपाद का शिष्य है, या गुरु हैं, जीबीसी हैं, हैं इसलिए शुद्ध भक्त हैं। हाँ सम्मान किया जाता है उनका, लेकिन गुणों के आधार पर वास्तव भगवान तो नहीं मानेंगे। मान लो कोई प्रभुपाद का शिष्य हो या गुरु हो, जीबीसी हो, अगर मान लो उल्टा कार्य करे है ना, तो हो सकता है कि यमदूत उसको लेने के लिए आए। कोई बहुत बड़ा गुरु भी हो करके अगर कोई उल्टा काम करे तो समाज में हो सकता है कि उसकी निंदा ना हो, उसका खूब सम्मान हो, लेकिन जब शरीर छोड़ेगा तो उसको यमदूत मिलेंगे ले जाने के लिए। यमदूत थोड़ी कहेंगे नहीं नहीं तुम बहुत बड़े गुरु हो, जीपीसी हो, इसलिए तुम्हारा जो है तुम्हें विष्णु दूत आएंगे लेने के लिए। इस आधार पर कोई व्यक्ति वैकुंठ नहीं जाता है, बल्कि गुण होने चाहिए, ऐसे गुण होने चाहिए। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, हाँ ये आगे, हराम भक्तस्य कुतो महद्गुणा, हराम भक्तस्य कुतो महद्गुणा। जो भक्त नहीं है उसमें सद्गुण नहीं होता, है ना। तो ये जो है मतलब लक्षण क्या है भक्त का, कि ये गुण होने चाहिए। आगे, जो भक्त कहलाना चाहता है उसे सद्गुणों का विकास करना चाहिए, इन सद्गुणों का अभ्यास भी करना भक्ति है। अगर आप इन सद्गुणों का अभ्यास करते हैं तो ये भी एक भक्ति है, है ना, विकास करना चाहिए। ये अवश्य है कि उसे इन गुणों के लिए अलग से बाहरी प्रयास नहीं करना पड़ता, अपितु कृष्ण भावना में तथा भक्ति में संलग्न रहने के कारण उसमें ये गुण स्वतः ही विकसित हो जाते हैं। तो प्रभुपाद क्या कहते हैं, अगर अलग से ना अभ्यास करते आप इन गुणों का, हाँ, तो भी गुण आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे, कृष्ण भावनामृत और भक्ति में संलग्न रहने के कारण आ जाएंगे, है ना। ये शास्ति भक्तिर भगवत किंचना सर्वैर गुणस्तत्र समासते सुरा। तो जिसमें अकिंचना भक्ति हो तो सभी गुण उसमें आ जाते हैं, अपने आप सभी गुण आ जाते हैं। हरा भक्तस्य कुतो महान गुणा, लेकिन जो हरि का भक्त नहीं है उसके अंदर अच्छे गुण कैसे हो सकते हैं। तो भगवान की भक्ति से अच्छे गुण अपने आप आ जाते हैं। जैसे कि मृगारी था, मृगारी जो है इतना कठोर हृदय का था, क्रूर, इतना अधिक क्रूर था कि पशुओं को अधमरा करके छोड़ दिया था। जैसे बाण मारा उसने, है ना, तो बाण घुस गया पशु को तो वो छटपटा रहा है, तो जान से नहीं मारता था वो, बल्कि छटपटाते पशु को देखता था और इसका आनंद लेता था कि वो छटपटा रहा है, देखो कितना दुष्ट। लेकिन जब नारद जी ने उसको भक्त बना दिया और उसके पास आए जब कुछ देर, कुछ समय के बाद, तो क्या देखा कि नारद जी को दूर से देख करके वो उनके पास आ रहा था, लेकिन रास्ते में चींटियां थीं तो कपड़े से उन चींटियों को हटा रहा था। तब उसको बहुत देर लगी, नारद जी बोले कि कितनी देर क्यों लगाई तुमने आने में, तो बोला कि महाराज रास्ते में चींटियां थी, पैर खींच आ जाएंगी हैं तो मर जाएंगी, इसलिए मैं कपड़े से हटा रहा था। तो इतना वो संवेदनशील हो गया कि कहां तो पशुओं की हत्या ना करके अधमरा करके उनको तड़पाता था और कहां एक चींटी के ऊपर भी पैर रखने के लिए वो जो है चिंतित है। तो ये जो बात है उसे किसी ने नहीं बताई, लेकिन स्वतः उसका ये स्वभाव बन गया। नारद जी ने कुछ नहीं बताया था कि तुम जो है अपने पैर को जो है चींटियों से बचा करके चलो, कोई चींटी तुम्हारे पैर में ना जाए, अपने आप ही वो सोचा उसने। नारद जी ने तो उसको केवल ही भक्ति की विधि बताई थी कि दिन भर हरे कृष्ण मंत्र का जप करो और कुछ नहीं करना है तुम्हें, बस तुलसी का पौधा अपने सामने रख लो और दिन भर हरे कृष्ण का जप करते रहो बस। बोला तो फिर मेरा भोजन कैसे मिलेगा, अगर मैं दिन में जप करता रहूंगा तो मुझे भोजन कैसे मिलेगा। नारद जी ने कहा कि भोजन की चिंता मत करो, भोजन मैं भेजूंगा। अब नारद जी अगर कह रहे हैं कि भोजन मैं भेजूंगा तो वो कैसे विश्वास ना करें, इतने बड़े संत हैं। लेकिन नारद जी को पता था कि वे थोड़े भोजन भेजेंगे, लेकिन अगर वो दिन भर कृष्ण का नाम लेगा तो कृष्ण भेजेंगे, नारद जी को पता है। तो उसे किसी में विश्वास नहीं है, नारद जी ने कहा कि मैं भेजूंगा, है? लेकिन वास्तव में नारद जी जानते थे कि मेरे आदेश के अनुसार अगर ये दिन भर जब करेगा तो कृष्ण इसको भूखा नहीं रखेंगे, भेजेंगे। और हुआ भी यही, महाराज जी ने कहा था बस तुलसी के पौधे के सामने बैठ करके जब करते रहो और कुछ नहीं करना, तो लोग आने लगे उसके दर्शन करने के लिए। अरे वो तो इतना बड़ा शिकारी था, इतना कठोर क्रूर, वो भक्त बन गया। ओहो भक्त बन गया, चलो चलो दर्शन करें उसके। और जब चले दर्शन करने के लिए तो सोचते हैं भाई कुछ उपहार ले जाए उसके लिए, तो उसके लिए इतना इतना भोजन, तरह तरह का भोजन उसके पास आता था कि उनको उसको उल्टी चिंता हो गई कि इतना भोजन का मैं क्या करूँगा। कहाँ उसको चिंता थी कि मुझे भोजन कहाँ से आएगा खाने के लिए, बल्कि उल्टी चिंता हो गई इसको, इतना भोजन मैं क्या करूँगा, मैं कैसे खा सकता हूँ, इतना भोजन आता उसके पास। तो फिर वो क्या करता था, उस भोजन को दूसरों को खिलाता था। आओ भाई ये खा लो भोजन रखा हुआ है यहाँ पर, तो बुला बुला के खिलाता था लोगों को भोजन। तो हाँ यहाँ पर ये लिखा है, प्रभुपाद लिखते हैं ये अवश्य किसी इन गुरुओं के लिए अलग से बाहरी प्रयास नहीं करना पड़ता। अभी तो कृष्ण भावना में तथा भक्ति में संलग्न रहने के कारण उसमें ये गुण स्वतः ही विकसित हो जाते हैं। हाँ ये सब पढ़ दिया मैंने, तो तात्पर्य मैंने पूरा पढ़ लिया है ना। तो चर्चा जो है मतलब हमने की है, अब इसमें शुरू में जो शब्द हैं इनमें भी चर्चा हम कर सकते हैं। समा शत्रु च मित्रे चा, भगवान कह रहे हैं शत्रु मित्र में समान होता है वो है? तो शत्रु मित्र समान होता है, लेकिन यहाँ तो भगवान अर्जुन को क्या कह रहे हैं, तुम युद्ध करो। जित्वा शत्रुन भुंक्षो राज्यम समृद्धम, भगवान अर्जुन से कहते हैं कि शत्रुओं को जीत करके समृद्ध राज्य भोगो। भगवान तो ये कह रहे हैं, अभी यहाँ पर कह रहे हैं भगवान कि शत्रु मित्र में समान होता है, है? और पिछले अध्याय में ही भगवान ने कहा है कि तस्मा तुम उत्तस्य सोलभस्व जित्वा शत्रुन भुंक्षो राज्यम समृद्धम, शत्रुओं को जीत कर समृद्ध राज्य भोगो। इसको कैसे समझेंगे, यहां पर भगवान कह रहे हैं कि शत्रु मित्र में समान, इसका क्या मतलब है, कौन बताएगा? हाँ जी
आपने बताया
था, हैंड माइक नहीं है, हैंड माइक।
शत्रु और मित्र में समान का मतलब है जो कृष्ण का भक्त है तो वो हमारा मित्र है, जैसे कृष्ण से दूर होता है तो शत्रु हो जाता
है। शत्रु मित्र में समान, इसका मतलब यही है कि कोई भी व्यक्ति जो है अगर कृष्ण का भक्त नहीं है या कृष्ण का भक्त नहीं बनना चाहता है, कृष्ण से शत्रुता करता है, तो इस आधार पर वो शत्रु मानता है उसको। और कोई व्यक्ति अगर कृष्ण का भजन करता है, कृष्ण का भक्त है, इस आधार पर वो अपना मित्र मानता है और कोई दूसरे कारण से नहीं है। जैसे कि सुग्रीव से जो है रावण ने कहा कि सुग्रीव तुम तो मेरे मित्र हो, बाली के साथ मेरी मित्रता थी, तुम भी मेरे मित्र हो, इसलिए राम को छोड़ करके चले जाओ, मेरे मेरी तुमसे कोई शत्रुता नहीं है। तो सुग्रीव ने उसकी मित्रता स्वीकार नहीं की। सुग्रीव ने क्या कहा, तुमने राम के साथ शत्रुता की है तो तुम मेरे शत्रु हो। तो शत्रु मित्र में समान का मतलब यह है कि अपने प्रति जो है कोई व्यक्ति अगर शत्रुता या मित्रता का व्यवहार करता है, है तो इस पर वो विचार नहीं करता है, वो भगवान के कारण विचार करता है कि भगवान से शत्रुता मित्रता करता है इसलिए मेरा शत्रु या मित्र है। इस आधार पर वो अपने साथ भी अगर व्यवहार कर रहा है शत्रुता का और भगवान के नियम के विरुद्ध है तो भी शत्रु है। जैसे अर्जुन के साथ पांडवों के साथ ये अन्याय कर रहे हैं, है ना, और इसके अनुसार ये भगवान के जो है आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं, अपराध करते हैं, है? तो वे शत्रु हैं। तो इसमें कुछ गहराई है, शत्रु मित्र में समान। शत्रु मित्र में समान, लेकिन फिर भी वो समान नहीं होते, शत्रु के साथ शत्रुता करते हैं है? और उसको जो है उसे दंड दे करके समाज में धर्म की स्थापना करते हैं। जैसे द्रौपदी भी वो उच्च दंड देना चाहिए शत्रुओं को जो है उच्च दंड दिलाना चाहती है, जैसे कि आगे कोई व्यक्ति ऐसा अनुचित कार्य ना करे धर्म की स्थापना के लिए। कोई अगर उल्टे काम करता है तो उसको उच्च दंड मिलना चाहिए। समा शत्रु च मित्रे चा, तो वैसे शत्रु मित्र में वो समान है। शत्रु मित्र में समान का ये भी मतलब है कि कुछ लोग इस संसार में ऐसे भी होते हैं कि कुछ पता नहीं कभी शत्रुता करते हैं कभी मित्रता करते हैं है? और कुछ पता नहीं कब ये आदमी जो है मेरे से शत्रुता करेगा कभी मित्रता करेगा, तो वो समान रहता है। समा शत्रु च मित्रे चा, मतलब दूर ही रहना, संसारी लोगों से दूर ही रहना। संसार के लोग जो है कभी शत्रुता करते हैं कभी मित्रता करते हैं, तो उन पर जो है ध्यान नहीं देता वो। ये भी शत्रुता कर रहा है तो ये मेरा शत्रु बन गया है, फिर आगे मित्रता करता है तो मेरा मित्र बन गया। तो इतनी जल्दी किसी को शत्रु या मित्र नहीं बनाते। तथा मान अपमान हो, मान अपमान में समान, मान अपमान में समान है ना। मान अपमान में समान का मतलब ये भी है कि जैसे कि सामान्य जनता है, कोई अगर जो है चल रही है जा रही है और सम्मान नहीं कर रहे हैं, तो भक्त नहीं सोचता है कि भाई इन्होंने मेरा सम्मान क्यों नहीं किया, क्योंकि उनको कुछ ज्ञान ही नहीं है। या कुत्ता मान लीजिए भौंकता है, उसको देख कुत्ता भौंकता है तो वो थोड़ी सोचता है कुत्ता मेरा अपमान कर रहा है, कुत्ता कुत्ता है। तो इस तरह से मान अपमान में वो समान है। मान अपमान में समान का ये मतलब नहीं है कि जहाँ उसका सम्मान होता है वहाँ पर उसका अपमान किया जाए, इसका ये मतलब नहीं है। जहाँ सम्मान होना चाहिए तो वहाँ अगर उसका अपमान होता है तो वो भगवान का अपमान होता है, क्योंकि अगर वो कृष्ण भावनामृत का प्रचार कर रहा है तो वो देखता भी है कि ये व्यक्ति मेरा सम्मान करके भगवान का सम्मान कर रहा है, क्योंकि मैं इसको संदेश दे रहा हूँ। तो प्रभुपाद ने इसलिए जो है अपना सम्मान कराया, प्रभुपाद ने अपना सम्मान कराया। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जानते थे कि उनके सम्मान के द्वारा ही कृष्ण सम्मानित होंगे, क्योंकि प्रभुपाद ही कृष्ण का संदेश दे रहे हैं लोगों को। तो जो व्यक्ति कृष्ण का संदेश देता है उसके माध्यम से ही भगवान जो है सम्मान स्वीकार करते हैं। अगर कोई व्यक्ति ऐसे भक्त का सम्मान नहीं करता है और भगवान का सम्मान करता है तो भगवान सम्मान स्वीकार नहीं करते ना। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, तो जिनको प्रसन्न करने से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। यस्या प्रसादान न गति कुतोपि, जिनको प्रसन्न ना करने से कोई गति नहीं, तो भगवान कोई रक्षा नहीं करेंगे आपकी, आपकी कोई पूजा स्वीकार नहीं करेंगे। अगर आप जो है गुरु का या साधु का अगर आप अपमान करते हैं तो ये सब जो है माना अपमान हो। शीत उष्ण सुख दुख हेसु, सर्दी गर्मी के समान सुख दुख, सुख दुख भी भौतिक संसार में जो आते हैं वो सर्दी गर्मी के समान ही होते हैं। सर्दी जब आती है तो शुरू होती है, फिर बढ़ती है, फिर बढ़ती है, फिर घटती है, तो घटने लगती है, घटती जाती है, फिर गर्मी शुरू होती है, फिर बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, फिर घटने लगती है, फिर घटती जाती है, घटती जाती है, घटती जाती है। वैसे सर्दी गर्मी तो अपने समय पर आती हैं और जाते हैं, उसी प्रकार से सुख दुख भी अपने समय पर आते हैं जाते हैं। शीतोष्ण सुख दुख हेसु समाह, इसलिए वो समान रहता है। और संग विवर्जिता। संग विवर्जिता का मतलब क्या है कि वो संगति नहीं करता है, असत संग, असत संग त्याग यही वैष्णव आचार, वैष्णव का ये सिद्धांत है असत संग त्याग करना, है ना। तो इस तरह से भगवान ने आज के दो श्लोकों में कुछ गुणों की चर्चा की है। और भगवान क्या कह रहे हैं, भक्तिमान में प्रियो न रहा, ऐसे गुण जिसके अंदर हूं, लेकिन विशेषता क्या है, भक्तिमान, भक्ति के साथ में ये गुण। अगर भक्ति नहीं है और ये गुण हो तो क्या होगा, भगवान को प्रिय नहीं होगा और ये गुण रहेंगे भी नहीं। अगर भक्ति नहीं है और ये गुण दिखाई पड़ रहे हैं तो ये उसी प्रकार से है जैसे कि सूर्य अस्त हो गया और सूर्य का प्रकाश फिर भी दिखाई देता है, लेकिन क्या हुआ है, नहीं रहेगा। सूर्य अस्त हो गया है तो सूर्य का प्रकाश होता है लेकिन कुछ समय के बाद नहीं रहेगा। उसी प्रकार से कृष्ण की भक्ति नहीं है और ये गुण है अगर दिखाई पड़े तो क्या समझना चाहिए, हाँ थोड़े समय के बाद चले जाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि उसके अंदर कोई भक्त नहीं है लेकिन उसके अंदर गुण दिखाई पड़ते हैं। आप कहते हैं भाई भक्त तो नहीं है लेकिन बहुत अच्छा है, लेकिन वो अच्छा नहीं है। भक्त अगर नहीं है तो अच्छा नहीं हो सकता कभी, जो भी अच्छाई दिखाई पड़ रही है वो चली जाएगी। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा पार्थसारथी ललिता विशाखा की जय। श्री श्री गौरदाय की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय हो। प्रश्न है, अच्छा
और उन्हें उपाधि दी जा रही है महाराज की और महाराज को उन्हें दी जाती है तो राजा होते हैं, तो फिर ऐसा क्यों है कि हम गुरु को महाराज कहते हैं।
गुरु को महाराज कहते हैं, महाराज का मतलब होता है जो बहुत बड़ा अधिकारी हो, जिसका शासन हो, उसको महाराज कहते हैं, है ना। राजा राजा से बड़ा महाराजा महाराज, है ना। तो राजाओं के भी जो है जो ऊपर होते हैं वो महाराज कहलाते हैं, ठीक है। हरि बोल।
प्रभु जी जैसे रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जैसे कहते थे कि एक पेड़ के नीचे एक दिन रहते थे, अगले दिन सोते थे अगले अगले अगले, अगले पेड़ में, भी असक्त ना हो जाए, तो इतने उच्च कोटि का भक्त भी क्या असक्त हो सकता है, या हमारे लिए शिक्षा है ये, इतने उच्च कोटि का भक्त भी असक्त हो सकता है पेड़ पे, कि हमारे हमारे को समझाने के लिए कर रहे हैं। या प्रभु बाल जी कभी लीला करते हैं कि उनकी बहन आकर बैठ जाती थी किसी माँ, तो सन्यासी के बीच में अगर बैठना है उन्होंने, जब सन्यासी हैं तभी उनको एंट्री है, तो इतने बड़े भक्त हम बाकी सन्यासी को सिखाने के लिए।
हाँ ये